भागवत श्रृंखला के इस दिन पर आज हम लोग तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है संध्या के समय दीति का गर्भधारण। तो इसके एक श्लोक को दोहराएंगे, कृपया इसको दोहराइए। मैत्रेय उवाच साधुवीरत्वया पृष्टम् अवतार कथां हरे यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यां यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विषातनी साधुवीरत्वया पृष्टम् अवतार कथां हरे यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विषातनी साधुवीरत्वया पृष्टम् अवतार कथां हरे यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विषातनीम्। मैत्रेय ने कहा, साधु भक्त वीर हे योद्धा, त्वया तुम्हारे द्वारा पृष्टम पूछी गई अवतार कथाम अवतार की कथाएं हरे हे भगवान की, यत् जो त्वम तुम स्वयं पृच्छसि मुझसे पूछ रहे हो मर्त्यानाम मर्त्यों के मृत्युपाश जन्म मृत्यु की श्रृंखला विषातनीम मोक्ष का स्त्रोत्र। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। महर्षि मैत्री ने कहा, हे योद्धा, तुम्हारे द्वारा की गई जिज्ञासा एक भक्त के अनुरूप है, क्योंकि इसका संबंध भगवान के अवतार से है। वे मर्त्यों को जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मोक्ष दिलाने वाले हैं। तात्पर्य, महर्षि मैत्री ने विदुर को योद्धा के रूप में संबोधित किया, क्योंकि वे न केवल कुरुवंश से संबंधित थे अपितु वराह तथा नरसिंह अवतारों में भगवान के वीरतापूर्ण कार्यों के विषय में सुनने के लिए उत्सुक थे। चूंकि ये जिज्ञासाएं भगवान के विषय में थीं, इसीलिए ये एक भक्त के सर्वथा अनुकूल थीं। भक्त को अन्य किसी सांसारी कथा सुनने में कोई रुचि नहीं रहती। वैसे सांसारी युद्ध की अनेक कथाएं हैं, किंतु भक्त इन्हें सुनने के लिए उन्मुख नहीं होता। भगवान जिन युद्ध कथाओं में भाग लेते हैं उनमें मृत्यु का युद्ध नहीं रहता, अपितु माया पाश के विरुद्ध युद्ध होता है, जिसके कारण मनुष्य को बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान की युद्ध कथाओं के सुनने में आनंद प्राप्त करता है वह जन्म मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाता है। मूर्ख लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण के सम्मिलित होने के विषय में संदेह करते हैं, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि उनके भाग लेने से उन लोगों की मुक्ति सुनिश्चित हो गई थी जो युद्ध भूमि में उपस्थित थे। भीष्म देव ने कहा है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित सारे लोगों को मृत्यु के बाद उन्हें अपना मूल आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। अतः भगवान की युद्ध कथाओं को सुनना अन्य किसी भक्ति के ही समान है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे इस अध्याय पर चर्चा प्रारंभ करने से पहले।
सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता हरमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाईन अति नीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कंठयोस्फुरा।
हरे कृष्णा। चौदहवां अध्याय। पिछले अध्याय में चर्चा प्रारंभ हुई थी कि कैसे भगवान वराहदेव प्रकट हुए, और हमने सुना कि दो अवतारों के वर्णन को मैत्री मुनि ने कहते हुए मिला दिया, जो एक हुए थे स्वयंभू मनु के समय और दूसरे जो चाक्षुष मनु के समय हुए। तो इन दोनों के वर्णन को मिला दिया, और अब इस अध्याय के प्रारंभ में करीब 4 श्लोकों में विदुर प्रश्न करते हैं। तो विदुर पूछते हैं कि आपने अभी अभी वर्णन किया, क्योंकि विदुर संतुष्ट नहीं हुए, बड़े संक्षेप में वर्णन कर दिया कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। तो फिर इस अध्याय में अब वो श्वेत वराह और रक्त वराह दो हुए थे, जैसे हमने वर्णन किया था। तो श्वेत वराह का वर्णन हुआ था पिछले अध्याय में कि उन्होंने भूमि को बचाया, और रक्त वराह, ये कभी कभी नील वराह भी कहते हैं, तो ऐसे जिनका वर्ण रक्त था, लाल था, तो ऐसे वराह देव का वर्णन सुनना चाहते हैं विदुर। तो विदुर प्रश्न कर रहे हैं कि आपने बताया कि हिरण्याक्ष का वध हुआ, तो बताइए कैसे युद्ध हुआ और कैसे उसका वध किया, और आपको मुझे बड़े विस्तार से बताना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ी इच्छा है, मैं सुनना चाहता हूँ, तो इसलिए आप इसका वर्णन कीजिए। तो विदुर ऐसे प्रश्नों को पूछ रहे हैं। ये पूरा अध्याय कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, नियमों को भक्ति के प्रकट करता है। जैसे इस प्रसंग में हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण नियम श्रवण, सुनना चाहिए। जैसे इस अध्याय, इस श्लोक के तात्पर्य में भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान की कथाओं के विषय में सुनना, ये भक्ति की बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है। भगवान जो भी लीलाएं करते हैं, चाहे युद्ध ही क्यों ना करते हों, जैसे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कभी कभी लोग कहते हैं कि युद्ध में भगवान को भाग नहीं लेना था, भगवान कैसे भगवान हैं, लोगों को मरवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। भगवान की सारी लीलाएं, जो लोग लीलाओं में भाग लेते हैं उनको भी मुक्त करती हैं। जैसे प्रभुपाद समझाते हैं कि युद्ध में जो भी मारे गए, भीष्म देव ने कहा वो सारे लोग वैकुंठ को प्राप्त हुए, तो जो लोग उन लीलाओं में भाग लेते हैं, चाहे वो मारे जाएं या वो मारें, जैसे अर्जुन ने मारा और कौरव जितने थे वो मारे गए, तो चाहे जो मरे या मारे जाएं, अगर भगवान की लीलाओं में भाग लेते हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, उन लीलाओं को जो केवल सुनते हैं, इसीलिए यहां मैत्री मुनि विदुर को धन्यवाद दे रहे हैं कि इतने अच्छे प्रश्न आपने किए हैं कि जो लोग केवल सुनते हैं भगवान की लीलाओं को, ऐसा नहीं है कि भाग लेकर ही मुक्त हो सकते हैं। अगर ऐसा होता तो भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में और भगवान में अंतर हो जाता। लेकिन शास्त्रों में समझाया गया है कि भगवान, भगवान के नाम, भगवान के रूप, गुण, लीलाओं में कोई भेद नहीं है। भगवान का नाम भी उतना ही शक्तिशाली है जितने भगवान, भगवान की कथाएं भी उतनी शक्तिशाली हैं जितने भगवान। अभिन्नत्वम नाम नामिनः, नाम और नामी अभिन्न हैं, एक ही हैं, वही शक्ति है। और इसीलिए जब हम कृष्ण की कथाओं को सुन रहे हैं तो वही शक्ति मिल रही है जो कृष्ण उपस्थित होकर प्रदान कर रहे थे। जब कृष्ण अर्जुन के साथ थे तो जो लाभ अर्जुन को मिल रहा था, जो शक्ति अर्जुन को मिल रही थी, जो शुद्धता अर्जुन को मिल रही थी, वही शक्ति, वही शुद्धता, वही लाभ कृष्ण की कथा सुनने से हमें मिलता है। इसीलिए प्रभुपाद चेतावनी देते हैं कि भेद नहीं करना चाहिए, ये नहीं सुनना सोचना चाहिए कि कृष्ण की कथा सुनना ये तो ठीक है, लेकिन कृष्ण के साथ रहना जैसे अर्जुन रहा वो महत्वपूर्ण है। नहीं, कोई भेद नहीं है। आज जब हम कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, और आज ही क्यों, लाखों साल बाद अगर कोई कृष्ण की कथा सुनेगा वो भी कृष्ण का संग करेगा। ये कृष्ण कथा का महत्व है। तो इस अध्याय में बहुत सारे ऐसे विशेष नियमों को, सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। तो पहली चीज हम लोग देखते हैं, पहला प्रसंग जहां विदुर आतुर हैं, अपनी आतुरता प्रकट कर रहे हैं कि आपने सुना दिया बहुत संक्षेप में, विस्तार से बताइए, और इतना ही नहीं, वो कहते हैं आपको सुनाना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं, मेरे अंदर आतुरता है। तो एक नियम, एक योग्यता विदुर दे रहे हैं भक्त की, कि भक्त की क्या योग्यता है, उसे सुनना चाहिए, आतुर रहना चाहिए सुनने के लिए, कभी भी श्रवण से पीछे नहीं जाना चाहिए। साधारणता ऐसा होता है कि जब हम लोग भगवान की कथाओं को सुनते हैं, कभी कभी लगता है हाँ ये तो मैं जानता हूं। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, ध्रुव महाराज की कथा 100 बार बारंबार वही कथा सुनते थे, जाते और कहते ध्रुव महाराज की कथा सुनो, 1 बार सुनी, 2 बार सुनी, 3 बार, 100 बार उन्होंने कथा सुनी। तो कोई कह सकता अरे एक ही कथा क्या क्या आनंद आएगा, हमें तो सब पता है कैसे ध्रुव ने क्या किया, कैसे उनकी माता ने अपमान किया, कैसे वो गए, ये तो सब पता है, फिर बारंबार सुनने में क्या होगा लाभ। बारंबार सुनने में हमारा साक्षात्कार बढ़ता है। जब हम पहली बार कृष्ण कथा, कोई अवतार की कथा सुनते हैं, अच्छी लगती है, दूसरी बार सुनते हैं आनंद बढ़ता है, तीसरी बार सुनते हैं उसमें जो छुपे हुए सिद्धांत हैं वो प्रकट होने लगते हैं, चौथी बार सुनते हैं वो सिद्धांत हृदय में विराजमान होते हैं, पांचवी बार सुनते हैं उनका साक्षात्कार होने लगता है। अर्थात जितनी बार हम वही कथा को सुनते हैं, वही कृष्ण कथा, वही भागवत, वही भगवद गीता, लेकिन धीरे धीरे नए सिद्धांतों को हृदय में प्रकट करती है और साक्षात्कार होता है। सिद्धांत वही है, हम देख पाते हैं उन्हें, पहली बार में देख नहीं पाते, दूसरी बार में देख नहीं पाते, धीरे 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 उन सिद्धांतों को देखकर अपने हृदय में विराजमान करते हैं। और फिर जब वो शिक्षाएं, वो सिद्धांत, वो साक्षात्कार कथा के द्वारा हो जाता है, तो फिर वो कथा बड़ी रुचिकर लगने लगती है, फिर उसमें स्वाद बढ़ जाता है, रस बढ़ जाता है। और इसलिए जो भक्त है वो कथा सुनने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता। चैतन्य महाप्रभु 100 बार उस कथा को सुनते, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम। जब ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो चिल्लाने लगे भूरिदा भूरिदा भूरिदा, मतलब सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति या सबसे कृपा करने वाला व्यक्ति वो है इस जगत में जो कृष्ण की कथाओं को कहता है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम, क्योंकि ये केवल श्रवण से ही जीव का मंगल हो जाता है। और ऐसे लोग जो इसको जानते हैं, भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना, सारे जगत में सारे लोकों में जाकर इन कथाओं को प्रसार करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जीव का मंगल, सर्वश्रेष्ठ चीज केवल कथा सुनने से होगी। इसीलिए कथाओं में रुचि बहुत आवश्यक है। तो ये पहला नियम भक्ति का, एक भक्त के गुण, एक भक्त के लक्षण। इस पहले प्रसंग में जहां विदुर प्रश्न कर रहे हैं, हम इसको सीखते हैं कि कैसी रुचि हमारी होनी चाहिए भगवान की कथाओं के श्रवण में। फिर आगे 5वें श्लोक से, जिस श्लोक को हमने पढ़ा, इससे करीब 7वें श्लोक तक मैत्री मुनि विदुर को धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया, और जो प्रश्न तुमने किया अवतार के विषय में, ये जीव को मुक्त करने वाला है। और मानो विदुर ने कहा अच्छा कोई उदाहरण है, तो मैत्री मुनि कहते हां ध्रुव महाराज का उदाहरण है। ध्रुव महाराज, इन्होंने इन्हीं कथाओं को सुना। मैत्री मुनि आगे के श्लोकों में कहते हैं ध्रुव महाराज ने इन्हीं कथाओं को सुना, इन्हीं अवतारों की कथाओं को सुना, बड़े आनंद से सुना, और उसके कारण इतना उनके अंदर आध्यात्मिक बल हो गया कि वो मृत्यु के सर पर पांव रखकर वैकुंठ चले गए। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि ध्रुव महाराज बड़ी कम उम्र में मुक्त हो गए थे इस जगत से, हालांकि उस समय उनकी संतान इत्यादि थी, उन्होंने राज्य भी किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने नारद मुनि से श्रवण किया था, सुना था भगवान की लीलाओं को, अवतारों को, और इसीलिए वे जब देह त्यागने का उनका समय आया तो भगवान के धाम से विमान आया, ये कथा है, ध्रुव महाराज को लेने के लिए विमान आया। और जब वो जाने लगे तो मृत्यु हाथ जोड़कर साक्षात खड़े हो गए कि ये जो शरीर है ये मेरी संपत्ति है। व्यक्ति को देह त्याग कर जाना होता है, लेकिन ध्रुव महाराज जैसे यहां वर्णन करे उसके सर पर पांव रखकर चले गए। जैसे एक बार कोई समझा रहे थे कि मृत्यु सामने आए, उन्होंने सर झुका दिया ध्रुव महाराज से कि महाराज आप जा रहे हैं, वैकुंठ जा रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, ये जो शरीर है ये मेरी संपत्ति है, इसको दे जाइए। तो जैसे ही सर झुकाया तो प्लेन पर चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं थी तो उसके सर पर पांव रखे और चले गए तो उसको सीढ़ी बना लिया और वह चले गए ऊपर। उसी शरीर में प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि उसी शरीर में वो चले गए भगवान के धाम। तो क्या कारण? कथाओं का श्रवण किया ध्रुव महाराज ने। तो इसलिए मैत्री मुनि उदाहरण दे रहे हैं कि हाँ, ऐसे लोग जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं निश्चित इस भवसागर से मुक्त हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवान की कथाओं को सुनना बहुत आवश्यक है हम सबके लिए। तो ये सिद्धांत यहाँ पर दिया जा रहा है। फिर आगे आठवें श्लोक से करीब पंद्रहवें श्लोक तक मैत्री मुनि वर्णन करते हैं। अब जो अवतार का वर्णन वराहदेव का वो करने वाले हैं उसके इतिहास का, उसके पृष्ठभूमि का, दिति के पुत्रों का, क्योंकि हिरण्याक्ष का वध सुनना था तो हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई जो हिरण्याक्ष के जन्म तक हुई, फिर जन्म हुआ इत्यादि, तो उन घटनाओं को अब वो कह रहे हैं कि कैसे हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। ये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस प्रसंग में वो बतलाएंगे कि कैसे दीति जो दक्ष की पुत्री थी और जिनका विवाह कश्यप मुनि से हुआ, तो कैसे वो अपने पति को प्रेरित करती हैं गलत समय पर संतान उत्पत्ति के लिए साथ में आने के लिए। और फिर उसके बाद वो वर्णन करेंगे ये कारण देती हैं दीति। तो पंद्रहवें श्लोक तक हम लोग कारण, और फिर सोलहवें श्लोक से देखेंगे कि कश्यप मुनि दीति को समझाने का प्रयास करते हैं। वो भी और कारण देते हैं कि हाँ करना चाहिए पुत्र उत्पन्न, लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि अभी इस समय नहीं। तो ऐसा ये वर्णन आएगा। तो आठवें श्लोक से वर्णन प्रारंभ किया उन्होंने कि किस प्रकार से दीति एक समय अपने पति कश्यप मुनि के पास आई। तो अब वो बता रहे हैं कि कैसे हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। संध्या का समय था और ऐसे समय में दीति आई कश्यप मुनि के पास, कश्यप मुनि जो उनके पति हैं। दरअसल दीति 13 बहनों में से एक हैं जिन सब का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। दक्ष की पुत्रियां थी 13 और 13 की 13 पुत्रियां उस समय कश्यप मुनि से दी गई। ये चाक्षुष मनु के दक्ष हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि सती भी दक्ष की पुत्री थी और उनका विवाह तो शिव जी से हुआ था, तो ये दक्ष हैं। जब सर काट दिया फिर से उनका जन्म हुआ। तो अब दक्ष की 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप मुनि से हुआ, तो उनमें से एक थी दीति, जैसे दीति, आदिति, वेनिता इत्यादि। तो दीति अब आई अपने पति के पास और वो चाहती थी कि पुत्र प्राप्त करना चाहती थी अपने पति से। तो उस समय वो कई कारण देने लगी अपने पति को कि क्यों आपको मुझे इस समय मेरे साथ संग करना चाहिए और पुत्र उत्पन्न करवाना चाहिए। तो दीति कहने लगी जब आई, क्योंकि वो जानती थी कि सीधे आकर पति से कहेंगी, पति उस समय ध्यान में मग्न थे, आध्यात्मिक क्रियाएं कर रहे थे। तो दीति ने आकर उनसे कहा कि इस समय, तो ऐसे मैत्री मुनि वर्णन करते हैं कि संध्या के समय आई और दीति ने कहा कि मैं आपसे पुत्र उत्पन्न करना चाहती हूं इसी समय। और फिर दीति ने कारण दिए। दीति पहला कारण देती हैं कि क्योंकि इस समय कामदेव बहुत कष्ट दे रहे हैं मुझे। उदाहरण देती हैं कि जैसे एक हाथी एक गज होता है, वो अगर केले के पेड़ को उखाड़
झाड़ दे तो केले के पेड़ को क्या शक्ति रह जाती है हाथी के सामने। तो इस तरह अभी ये जो काम वासना है ये हाथी के समान हो गई है और मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि इसको मैं संभाल सकूं। तो इसीलिए आप मुझे मेरे साथ इस समय संग कीजिए। दूसरा वो कहती हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि दीति को काम वासना इतनी नहीं तंग कर रही थी लेकिन वो पुत्र उत्पन्न करना चाहती थी, वो पुत्र चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी कामना है पुत्र की, मैं पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, इसलिए आप संग कीजिए। और मेरी जो अन्य बहनें हैं या जो आपकी अन्य पत्नियां हैं उन सबको पुत्र हो चुके हैं, केवल मुझे ही पुत्र नहीं हुए हैं, तो इसीलिए भी आपको मुझे अभी पुत्र उत्पन्न कराना चाहिए। और साथ ही साथ हमने आपको समर्पण किया है, हमारे पिताजी ने हमसे पूछा था, दीति कहती हैं कि हम सब बहनों को एक एक बुलाकर पिताजी ने पूछा, दक्ष ने, कि तुम जिससे चाहो मैं तुम्हारा विवाह उससे कर दूंगा, तुम अपना पति चुनो। तो हम सब ने अलग अलग, उस समय प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि एक स्त्री के लिए एक पुत्री के लिए सीधे पिता से ये कहना कि मैं इनको इनसे विवाह करना चाहती हूँ ये तो ठीक नहीं था। इसीलिए उस समय पिता पुत्री की जो कामना है वो इच्छा है वो अन्यों के द्वारा, जैसे माँ दादी इत्यादि उनके द्वारा जाना करते थे। तो इस तरह दक्ष ने किसी तरह जान लिया कि ये जो तीन ये सारी पुत्रियां हैं ये कश्यप मुनि से विवाह करना चाहती हैं, तो इसलिए सारी पुत्रियों का विवाह उन्होंने कश्यप मुनि से किया था। तो प्रभुपाद ये समझाते हैं कि कैसे पुत्रियों से उस समय पूछकर राजा भी कैसे विवाह किया करवाया करते थे। तो उस समय ये हो गया, उनको पूछ लिया गया, तो हम सारी दीति अब कह रही कि हम सारी बहनों ने आपको स्वीकार किया। तो कश्यप मुनि ये मरीचि के पुत्र हैं, मरीचि ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि। तो कश्यप मुनि को स्वीकार किया जो ध्यान मग्न थे, तो क्योंकि हमने आपको स्वीकार किया है और आपका कर्तव्य है हमारी रक्षा करना और हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति करना, तो इसीलिए आपको हमारी मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए और बाकी सारी जो पत्नियां हैं आपकी उनको सब हो गया है पुत्र, मुझे नहीं हुआ, तो इसलिए आप पुत्र प्रदान कीजिए। तो ये सुनकर अब 16वें श्लोक से आगे कश्यप मुनि दीति को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि कश्यप मुनि एक ऐसे पति हैं जो पत्नी के अधीन है, मान लीजिए हैंडपैक्ड हस्बैंड प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए बहुत बढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बोले, ठीक थोड़े से ठीक बोला लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ाई, जैसे एक श्लोक में उनको रानी, घर की रानी को कहकर संबोधित करते, प्रभुपाद कहते हैं बहुत ज्यादा हो गया कश्यप मुनि ये बहुत ज्यादा उनको उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऐसा पति उसको हिंदी में क्या कहते हैं, हैंडपैक्ड हस्बैंड, हाँ वो तो अच्छा शब्द नहीं है, कोई अच्छा शब्द तो खैर पत्नी के अधीन रहने वाला व्यक्ति। तो कश्यप मुनि गुणगान करने लगे कि हाँ तुम जो कह रही हो सही है, मुझे तुम्हें पुत्र प्रदान करना चाहिए, मेरा कर्तव्य है। और साथ साथ वो ये भी कहने लगे कि जो पत्नी होती है, तो पत्नी का गुणगान करने लगे, तो पत्नी ही पति को धर्म अर्थ काम ये तीन चीजों को प्रदान करती है पत्नी। तो धर्म अर्थ काम, तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जब पत्नी होती है तो व्यक्ति पत्नी के साथ आनंद लेता है, फिर कुछ धन अर्जन करता है, गृहस्थ परिवार का वर्णन करते हैं, गृहस्थ जीवन का। तो धर्म अर्थ इत्यादि तुम ही प्रदान करती हो। साथ ही साथ वो कहते हैं कि पत्नी एक नाव की तरह होती है जो पति को इस जन्म मृत्यु के परे ले जा सकती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब व्यक्ति विवाहित होता है तो वो गलत काम नहीं करता, तो अपनी इंद्रियों को अगर संतुष्ट करना है तो पत्नी से वो कर लेता है, लेकिन बाहर जाकर अवैध संग नहीं करता, इसीलिए पत्नी रक्षा करती है पति की पाप से, उसको पाप नहीं करने देती। साथ ही साथ वो वर्णन करते हैं कि पत्नी एक दुर्ग के समान है, जो पति की रक्षा करती है, अर्थात जब इंद्रियां आक्रमण करती हैं पति के ऊपर, तो फिर वो गलत कार्य करने से अच्छा है कि पत्नी के साथ संतान उत्पत्ति के लिए वो संग करे। तो ऐसे वो बड़ा गुणगान करने लगे। प्रभुपाद इन तात्पर्यों में बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रकट करते हैं कि किस प्रकार पति और पत्नी, ये जो पारिवारिक जीवन है, इनको कैसे रहना चाहिए और इसमें सबसे आवश्यक चीज क्या है। प्रभुपाद कहते हैं सबसे पहले, विवाह के पहले दोनों का प्रशिक्षण होना आवश्यक है। पति को ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण लेना चाहिए और पत्नी को सतीत्व का। अ बॉय शुड बी ट्रेन्ड इन ब्रह्मचर्य एंड गर्ल इन चेस्टिटी। तो ये दोनों को पहले प्रशिक्षण होना चाहिए, अर्थात विवाह के पहले अगर कोई विवाह भी करना चाहता है तो पहले ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते दोनों का प्रशिक्षण आवश्यक है। व्यक्ति को ब्रह्मचर्य में अच्छी तरह प्रशिक्षण होना, ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना सीखना। अर्थात जब विवाहित जीवन हो तो विवाहित जीवन में अनियंत्रित मैथुन सुख के लिए प्रयास नहीं करना, मन को वश में करके इंद्रियों को वश में करने का प्रशिक्षण पहले लेना चाहिए विवाह के पहले, तब व्यक्ति को विवाहित होना चाहिए, अगर उसके बाद भी इच्छा रहे विवाह करने की तो। और स्त्रियों को सतीत्व का प्रशिक्षण होना चाहिए कि कैसे उन्हें अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए। भागवत के पांचवें स्कंद में वर्णन आएगा कि किसी व्यक्ति को गुरु नहीं होना चाहिए, पिता नहीं होना चाहिए, माता नहीं होना चाहिए। गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात, दैवम न सस्यात, नहीं होना चाहिए जब तक न मोचयेत, मोक्ष नहीं दिला सकते अपने आश्रितों को। तो इस दृष्टि से प्रभुपाद समझाते हैं कि पारिवारिक जीवन का आधार है भक्ति। पति और पत्नी को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के संग आना चाहिए, तो ये प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। जब तक इस तरह से पति और पत्नी को प्रशिक्षित नहीं किया गया तब तक उन्हें विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो विवाह करेंगे तो अनियंत्रित इंद्रियों के द्वारा केवल भोगों में और पापों में लगेंगे। पति पत्नी के लिए संग में आना अनिवार्य है केवल संतान उत्पत्ति के लिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो धर्म के अनुसार किया गया काम है वो मैं हूं। धर्म अविरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध जो नहीं है वो काम मैं हूं। तो धर्म के विरुद्ध काम कौन सा नहीं है? धर्म के विरुद्ध काम वो है जहां पति पत्नी संतान उत्पत्ति के लिए एक साथ में आते हैं केवल, और वो भी कैसी संतान? कृष्ण भावना भावित, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज जैसी संतानें उत्पन्न करना। इसीलिए गर्भाधान संस्कार बहुत आवश्यक है। यहां जो वर्णन किया जा रहा है कि ऐसे समय में, गलत समय में दीति ने अपने पति को संग करने के लिए प्रेरित किया, तो गर्भाधान संस्कार बहुत आवश्यक है। जीव जब गर्भ में आता है उसके पहले कुछ संस्कार होते हैं। तो शास्त्रों में संस्कारों को कहा गया है, जो गर्भाधान संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार, जब व्यक्ति मर जाता है, अंतिम संस्कार तक कहे गए हैं। तो कुछ प्रमुख, वैसे तो बहुत से संस्कार हैं, लेकिन कुछ प्रमुख संस्कार हैं जिनमें से पहला है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार अर्थात पति और पत्नी संतान की उत्पत्ति के लिए एक दूसरे के संग में आने से पहले भगवान का स्मरण करते हैं, अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं, आध्यात्मिक चेतना में स्थित होते हैं, और तब एक ऐसी आत्मा माँ के गर्भ में आकर्षित होती है या आती है जो भगवान के भक्त होती है। लेकिन अगर ये संस्कार नहीं किया जाए या सही समय ना हो, आध्यात्मिक चेतना ना हो, तो फिर जो बालक माँ के गर्भ में आकर्षित होगा हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसा होगा। ये इस अध्याय में बड़ा स्पष्ट किया गया है। इसीलिए संस्कार बहुत आवश्यक हैं, संस्कारों की आवश्यकता है। संस्कारों का मूल उद्देश्य क्या है? संस्कारों का मूल उद्देश्य केवल कोई क्रिया करना नहीं है, कुछ रीति रिवाजों का पालन कर देना नहीं है कि हाँ इस संस्कार में ऐसा कहा गया, ये मंत्र का उच्चारण बस हो गया। संस्कारों का मूल उद्देश्य है आध्यात्मिक चेतना को स्थापित करना। अगर उन संस्कारों के द्वारा आध्यात्मिक चेतना स्थापित नहीं हो रही है तो वो व्यर्थ का संस्कार है, वो केवल रीति रिवाज है, उसका कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए संस्कारों को रीति रिवाज नहीं बनाना चाहिए, संस्कारों के द्वारा चेतना को आध्यात्मिक करना चाहिए, जिससे फिर आगे चलकर ऐसी संतान उत्पन्न हो। तो गर्भाधान संस्कार का उद्देश्य है कि पति और पत्नी ऐसी चेतना को बनाएं, आध्यात्मिक चेतना को, जिसके द्वारा एक ऐसी आत्मा मां के गर्भ में आकर्षित हो सके, आ सके, जो भगवान के शुद्ध भक्त बने। ये कृष्ण भावना भावित काम है। तो अगर काम को, वैसे तो काम को हम कहीं उपयोग नहीं कर सकते, इसीलिए चार आश्रमों में से तीन आश्रमों में काम की मनाई है, काम वासना की पूर्ति की मनाई है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इनको सतत सदैव मनसा कर्मणा वाचा काम से दूर रहना है, मनाई है उनके लिए। लेकिन केवल एक आश्रम में अनुमति दी गई है उन लोगों के लिए जो इस तरह से जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, लेकिन उनके लिए भी अनियंत्रित काम की अनुमति नहीं है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पारिवारिक जीवन या वैवाहिक जीवन ये अनियंत्रित काम का अनुमति दे दी गई है, नहीं। अगर व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित काम या अपने काम वासना को कृष्ण भावना में लगाना है तो उसको कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए मात्र पति पत्नी को संग में आना चाहिए और इसके लिए प्रशिक्षण चाहिए। नहीं तो हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः, मन को हरण कर लेती। तो इसीलिए विशेषतः भक्तों को ये बड़ा ध्यान देना चाहिए। पुरुषों में ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण आवश्यक है, युवकों को पहले प्रशिक्षण लेना चाहिए और फिर अगर भी ये माने कि नहीं हम इस मार्ग में, इस ब्रह्मचर्य के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि हमें बहुत कष्ट दे रही हैं, और अगर वो निर्णय लेते हैं गृहस्थ जीवन में जाने का, तो भी अनियंत्रित वैवाहिक जीवन नहीं होना चाहिए। जीवन ऐसा होना चाहिए कि वे, प्रभुपाद लिखते एक तात्पर्य में कि गृहस्थों का कर्तव्य है कि वो ब्रह्मचारी और सन्यासियों को उत्पन्न करें अर्थात ऐसे संतान, ऐसे पुत्रों को उत्पन्न करें जो आगे चलकर ब्रह्मचारी और सन्यासी बने। तो ऐसा तब होगा जब गर्भ धारण करने के समय चेतना शुद्ध होगी। ऐसी चेतना में आप सोचिए आज आगे चलकर समाज कितना अच्छा हो जाएगा, जब हर भक्त परिवार या हर भक्त पति पत्नी इस चेतना में संतान उत्पत्ति के लिए संग में आए कि ये जो मेरी संतान होगी आगे चलकर बहुत बड़ा सन्यासी बनना चाहिए, और उस चेतना में, उस भगवत चेतना में, कृष्ण चेतना में अगर वो संतान की उत्पत्ति करते हैं तो आगे चलकर सारे जगत में कृष्ण भावना का प्रचार बड़ी सरलता से हो जाएगा, सारे सन्यासी उत्पन्न होंगे। प्रश्न ये आ रहा है कि अगर सारे सन्यासी उत्पन्न, हमें मालूम है आपके मन में यही प्रश्न है, तो सब यही सोच रहे हैं, कह रहे प्रभु जी सारे सन्यासी हो गए तो माता जी का क्या होगा। ऐसा कभी होगा नहीं जगत में कि सारे सन्यासी, कम से कम हम गृहस्थ ब्रह्मचारी तो उत्पन्न करें। गृहस्थ ब्रह्मचारी मतलब जो गृहस्थ जीवन में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सके, उतना तो होगा। तो इसीलिए प्रयास यही होना चाहिए। तो ये संस्कार हैं। तो इसलिए शुद्ध चेतना में भगवान जो कहते भगवद गीता में धर्मो विरुद्ध कामोऽस्मि, कि धर्म के विरुद्ध जो काम है उसको नहीं करना चाहिए, जो धर्म से विरुद्ध नहीं है, धर्म के अनुसार किए गए काम को। और धर्म का अनुसार काम केवल, मान लीजिए केवल पति पत्नी अगर काम वासना की पूर्ति करते हैं वो धर्म नहीं है, जो इसमें बहुत स्पष्ट कहा गया, वो धर्म नहीं, धर्म मतलब केवल कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति के लिए वो धर्म है, वो कृष्ण है। पति पत्नी केवल आनंद के लिए अगर करते हैं तो वो भी कृष्ण नहीं है, उसको कृष्ण नहीं मानना चाहिए। तो ऐसे काम के लिए यहां पर कहा गया। तो दीति ने कारण दे दिए और फिर कश्यप मुनि भी कहने लगे कि हाँ पत्नी तो दुर्ग के समान है और मुझे तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना ही चाहिए, स्वाभाविक है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो पत्नी होती है वो पति के कर्मों को भी ले लेती है। वैसे ऐसा कहा जाता है, प्रभुपाद लिखते हैं कि पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी मतलब जो पति का आधा अंग है। तो जो भी पति कार्य करता है उसके आधा फल पत्नी को मिल जाता है। पता है कितनी अच्छी स्थिति है। लोग कहते हैं शास्त्रों में स्त्रियों को नीचा दिखाया गया। कहाँ नीचा दिखाया गया, बेचारा पति मेहनत करके आध्यात्मिक लाभ ले और पत्नी को आधा मिल जाता है, बताइए। तो कितना गुणगान, कितना अच्छा स्थान दिया गया है पत्नी को। तो प्रभुपाद समझाते कि अर्धांगिनी है तो कर्तव्य क्या है। कर्तव्य यह है कि पत्नी को पति के आध्यात्मिक कार्यों में पूर्ण सहयोग करना चाहिए, यह कर्तव्य है पत्नी का, और कोई कार्य नहीं। पत्नी का एक ही कर्तव्य है कि पति के आध्यात्मिक कार्यों में, अगर पति आध्यात्मिक कार्यों में लगा है तो वो भी एक बात है, अगर पति बड़ा बदमाश है तो फिर उसमें मदद नहीं करना चाहिए। तो पति के आध्यात्मिक कार्यों में बहुत मदद करें, ये पत्नी का कर्तव्य है। और फिर केवल मदद करने से पत्नी को लाभ मिलेगा पति के आध्यात्मिक क्रियाओं का या पति के पुण्यों का। तो पत्नी का यही कर्तव्य है कि वो मदद करे आध्यात्मिक। तो इसके अनुसार पारिवारिक या वैवाहिक जीवन का उद्देश्य क्या हुआ, पति पत्नी दोनों साथ में आकर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ें, बस एक ही उद्देश्य। अगर ये उद्देश्य है तो उसको गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, उसको गृहस्थ कहा जाता है, अन्यथा वो गृह मेधी है। गृह मेधी मतलब जिसने घर को ही सब कुछ मान लिया है, बस आश्रम नहीं बनाया। तो घर को भी आश्रम बनाना चाहिए। और घर को आश्रम कैसे बना सकते हैं, सारे घर में भक्ति का वातावरण हो, चेतना भक्ति की हो, पति पत्नी एक दूसरे को सहयोग करें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और व्यवहारिक तौर पे आज के समय में यही प्रैक्टिकल है कि पति पत्नी एक दूसरे को सहयोग करें उसके भगवान के नाम का जप करने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान की सेवा करने में। इसीलिए कहा गया है कि गृहस्थों को घर में विग्रह लाने चाहिए ताकि केंद्र भगवान हो जाएं। तो पति पत्नी को भगवान के विग्रह रखकर उनकी सेवा करना, उनका श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना। लेकिन जो गृहस्थ भक्त मंदिर के आसपास रहते हैं उन्हें विग्रह नहीं लाने चाहिए घर में, उनके लिए मंदिर के जो विग्रह हैं वही उनके विग्रह हैं। तो उनको मंदिर में भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के लिए हार बनाना, भगवान के लिए श्रृंगार करना, भोग बनाना इत्यादि। तो यही पूरा जीवन होना चाहिए। अगर व्यक्ति धन भी कमाए तो धन भी केवल इसीलिए होना चाहिए कि अन्य तीन आश्रमों को चला सके, ये कर्तव्य है। आज हम अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। व्यक्ति सोचता है कि अगर मैंने थोड़ा सा दान कर दिया मंदिर में, साल में एक बार, महीने में एक बार, जन्माष्टमी के दिन, तो मुझे बहुत बड़ा लाभ हो गया। कोई लाभ नहीं है, थोड़ा बहुत लाभ है ठीक है, पूर्ण लाभ नहीं है, पूर्ण लाभ नहीं है, वो कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य क्या है, तीनों आश्रमों को चलाने की जिम्मेदारी है उसकी। क्योंकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी कमाई नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वे करने लगे तो सारा आध्यात्मिक वातावरण दूषित हो जाएगा। अगर ब्रह्मचारी अपना घर बनाने लगे, कमाई करने लगे, बैंक बैलेंस बढ़ाने लगे, सन्यासी के तीन चार बंगलों हो जाए, क्या 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 जीवन है, कौन सा सन्यास, कौन सा वैराग्य। उनका अपना कुछ नहीं होना चाहिए, एक रुपया भी नहीं होना चाहिए अपना कहने के लिए। ये ब्रह्मचारी और सन्यासी और वानप्रस्थ जीवन है, उनके पास अपना कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, संस्था में है, भगवान का है, उनका कुछ नहीं है। तो वैराग्य भावना क्या, आज यहां है कल वहां चले जाए, कोई चिंता नहीं। लेकिन गृहस्थ का कर्तव्य क्या है? गृहस्थ का कर्तव्य इतना नहीं है कि उन्होंने साल में एक बार कुछ डोनेशन दे दिया, उनका नाम आ गया, फला फला ने ये किया, बहुत हो गई, भक्ति पूर्ण हुई। नहीं, कर्तव्य पूर्ण हुआ नहीं। उनको देखना है कि ब्रह्मचारी सन्यासियों को कोई कष्ट ना हो, ये उनका कर्तव्य है। कि हम धन कमाएं और हम, और कोई कह सकता है वाह क्यों बाकी तीन धन नहीं कमाएं और हमें अकेले क्यों धन कमाएं? अनुमति भी तो आपने ही मांगी ना स्वतंत्र रहने की। तो अगर स्वतंत्र रह रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं, आप जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो आपको तीनों की उठानी है, नहीं तो ब्रह्मचारी बनो। किसने कहा गृहस्थ बनने के लिए? राइट, क्षमा चाहते हैं, ऐसे आप लोगों को थोड़ा बुरा लग रहा होगा। कर्तव्य है शास्त्र के अनुसार कि तीनों आश्रमों में ना ब्रह्मचारियों को ना सन्यासियों को, कोई वानप्रस्थियों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यह कर्तव्य है गृहस्थों का, और खुशी से, प्रसन्नता से। ऐसे नहीं कि मंदिर जाते हैं लोग, डोनेशन देना पड़ेगा, छोड़ो दो हफ्ते मंदिर ही नहीं जाएंगे। प्रसन्नता से खुद आकर ये देना चाहिए, कर्तव्य मानकर, अपने बच्चों की तरह। ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थों के संतानें हैं, तो जैसे गृहस्थ अपने घर में अपनी संतानों को देखते हैं कि कोई कमी ना हो, उनको खाने के लिए ठीक मिले, उनको पहनने के लिए ठीक मिले, उनको कपड़ा ठीक मिले, उनको उनकी पढ़ाई प्रशिक्षण अच्छा हो, ये जैसे बच्चों के लिए मानते हैं, ऐसे ही ब्रह्मचारी और सन्यासियों को अपना बच्चा मानना चाहिए, संतान मानना चाहिए गृहस्थ को, और उस दृष्टि में उन्हें उनका पालन करना चाहिए। ये कर्तव्य है गृहस्थ जीवन का। और अगर कोई ये नहीं कर सकता, अर्थात वो गृहस्थ जीवन में रहकर केवल कृष्ण भावना भावित संतानें उत्पन्न नहीं कर सकता, पत्नी का संग केवल भगवान के भक्तों के भक्तों की उत्पत्ति के लिए नहीं कर सकता, और अगर वो तीनों आश्रमों को चला नहीं सकता, और अगर अपने आश्रित जो संतानें हैं, पत्नी हैं इत्यादि, उनको भगवान की भक्ति में नहीं लगा सकता, गृहस्थ बनने का अधिकार नहीं है। इसलिए भोग के लिए गृहस्थ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, उत्पात। जैसे दीति और कश्यप ने भोग करने के लिए जब संग किया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुए। तो इसीलिए कम से कम भक्तों को हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप उत्पन्न नहीं करने चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे समाज में एक सुव्यवस्था बनी रहे। तो ऐसे कश्यप मुनि ने फिर ये सब समझा दिया कि कैसे आप रखते हो, आप ही हमारी काम वासना से हमें बचा कर रखते हो इत्यादि। और फिर उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं कि आपको पुत्र प्रदान करना है, मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा समय रुक जाओ, ये जो अभी समय है, ये संध्या का समय, ये ठीक नहीं है, ये मुहूर्त ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में अगर हमने संतान उत्पत्ति की तो ये शिवजी के प्रति अपराध हो जाएगा। वो कहते हैं ये जो समय है, ये भूत प्रेतों का समय है, शिवजी घूमते रहते हैं और शिवजी देखते हैं कि ऐसे समय में जो भी कोई कार्य करता उसको दंड देते हैं, इसलिए ये कार्य नहीं करना चाहिए, अभी रुक जाओ थोड़ा समय, समय जाने दो, ये भूतों का समय निकल जाए, फिर मैं आपको पुत्र प्रदान करूंगा। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो दीति ने स्वीकार नहीं किया। तो तीसरी ये 16वें से श्लोक से हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रयास किया, लेकिन दीति ने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि दीति इतनी काम वासना से ग्रसित थी कि अभी कोई चिंता नहीं, शिव जी का बता दिया, सब बता दिया, कोई चिंता नहीं अभी। तो देखिए, मन नियंत्रित नहीं हो तो व्यक्ति जान कर भी बता दिया, और इतना भी बताया कि शिवजी तुम्हारे संबंधी हैं, लेकिन शिवजी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, दंड देंगे, लेकिन माने नहीं। तो उस समय फिर प्रभुपद लिखते हैं कि कश्यप मुनि ने भी उसकी बातों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि कश्यप मुनि बड़े वीक हो गए, कमजोर हो गए अपनी पत्नी के आगे, और उन्होंने भी स्वीकार किया। और फिर उस समय गलत समय में दोनों ने संग किया, और फिर उसके बाद दीति को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि दीति ने बहुत पश्चाताप प्रकट करना प्रारंभ किया, पश्चाताप किया कि किस तरह से गलत समय में मैंने ये कर दिया। और कश्यप मुनि ने फिर उनको बताया कि तुमने जो ये समय किया है ये, वो प्रार्थना करने लगी शिव जी मेरे से प्रसन्न हों इत्यादि। तो कश्यप मुनि ने कहा कि तुमने जो ये कार्य इस समय में हो गया है तो तुम्हारे गर्भ से दो ऐसे पुत्र उत्पन्न होंगे जो सारे ब्रह्मांड में उत्पात मचा देंगे, सारे गलत काम करेंगे, पापी असुर होंगे, राक्षस, और इतने बड़े होंगे कि तुम्हारे जो पुत्र हैं वो भगवान के हाथों मारे जाएंगे। तो दीति ने जब ये सुना, देखिए जब व्यक्ति के हृदय में भक्ति होती है, थोड़े समय के लिए भले ही वो विचलित हो गई थी, लेकिन जब भक्ति होती है तो फिर कितना। तो दीति ने फिर प्रार्थना की कश्यप मुनि से कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, मेरे पुत्र अगर भगवान के हाथों मारे जाएंगे बहुत अच्छा, लेकिन ब्राह्मणों का श्राप नहीं लगना चाहिए, कोई ऐसे कार्य ना करें ब्राह्मणों का श्राप लगे और फिर कैसे कौन उनको रक्षा करेगा, तो कुछ तो आप उपाय कीजिए। तो उस समय कश्यप मुनि ने कहा कि देखो ये तो निश्चित हो गया है कि तुम्हारे जो पुत्र हैं वो दोनों असुर होंगे, लेकिन तुम्हारे एक पुत्र का जो पुत्र होगा, क्योंकि तुमने अभी बहुत अच्छी प्रार्थना की है, दरअसल कश्यप मुनि ने तुम्हारे असुर पुत्र होंगे इसका कारण क्या दिया, उसके कारण उन्होंने दिया क्योंकि तुम्हारा मन अनियंत्रित था, पहला चीज। दूसरा चीज, तुमने गलत समय पे कार्य किया। तीसरा चीज, तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने उनको सलाह दी थी कि ये सही नहीं। और चौथा चीज, तुमने शिवजी का अपमान कर दिया। तो ये चार चीजें वो कहते हैं, तुम्हारा मन नियंत्रित नहीं था, गलत समय था, तुमने मेरी बात, मेरी मतलब पति की बात नहीं मानी, और शिवजी का अपमान किया। अब ये चार चीजों को देखिए, अगर हम ये चार चीजें हमारे मन में हो, जैसे हमारा मन अनियंत्रित हो, गलत समय पर हम कुछ कार्य करें, तीसरा दीति ने अपने पति का पति की बातों को नहीं माना, पति कौन होते हैं पत्नी के लिए, गुरु के समान, तो गुरु की बातों को नहीं माना, और चौथा शिव जी का अपमान किया, शिव जी कौन है, भक्त है। तो हमारे लिए सीखना सीख है बहुत सुंदर कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, गलत समय में हम कार्य करते हैं और गुरु की शिक्षाओं को, गुरु के द्वारा कहे गए बातों को मानते नहीं हैं और भक्तों का अपमान करते हैं, तो फिर उत्पात होगा, केवल उत्पात। फिर कारण दिए कि ये कारण है तुम्हारे पुत्र ऐसे होंगे क्योंकि तुमने ये किया। तो इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपने मन को नियंत्रित करें। मन को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, सवै मनः कृष्ण पदारविन्दो, मन को कृष्ण के चरणों में लगाकर। मन को वश में कैसे कर सकते हैं, अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, कुछ भक्ति के अभ्यासों को कर और जो चीजें मना है, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, उन चीजों को त्याग कर जो मना है और उन चीजों को ग्रहण करके जो अनिवार्य है, मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करना है तो भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, एक ही मार्ग है, अन्य कोई मार्ग से मन को वश में नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मन को वश में रखना है। दीति ने गलती क्या की, मन को वश में नहीं रखा गलत समय पर, इसीलिए हमें सही समय सब कार्य करना चाहिए। भक्ति का जो समय है, अर्थात हमारा जो जीवन है बहुत थोड़ा है, अगर हम उसको ऐसे बाकी चीजों में लगा दें और फिर जो समय भक्ति का है उसमें भक्ति ना कर कर हम इंद्रिय तृप्ति करें, हम भोग करें, हम भौतिक आनंद लेने का प्रयास करें, तो ये गलत है। इसलिए समय बहुत कम है हम सबके पास, ये समय भक्ति के लिए मिला है, मनुष्य जीवन तपस्या के लिए, भक्ति के लिए मिला है, आनंद और भोग के लिए नहीं। तो इस समय को हमें केवल भक्ति में लगाना चाहिए और भक्ति में भी कार्य सब सही समय पर करने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरा, गुरु के द्वारा दी गई उपदेशों को, सलाहों को, आदेशों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। दीति को वो समझा रहे थे, दीति ने माना नहीं, तो कहते क्योंकि तुमने मेरी बात मानी नहीं, मेरी मतलब पत्नी के लिए पति गुरु है, तो हम अगर गुरु की बात नहीं मानते, ये सोचते कि हमें ज्यादा पता है। भक्ति में कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम लोग आते हैं बहुत समर्पण करते हैं, गुरु स्वीकार करते हैं, लेकिन जब गुरु कोई बात कहते तो कहते नहीं नहीं ये नहीं महाराज, ये ठीक है मैं ज्यादा जानता हूं। गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिया क्या आर न करी हमने आशा। ये समर्पण है कि जो गुरु ने कह दिया, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, केवल वही मेरे हृदय में रहेगा, आर न करी हमने आशा, और कोई आशा नहीं। तो ये हमारे लिए होना चाहिए। लेकिन हम लोग कैसे गुरु को स्वीकार करते हैं, फैशन के लिए। हम लोग गुरु को स्वीकार करते हैं कि जब तक गुरु जो हमें पसंद है वो बोलता रहे तब तक वो बहुत अच्छा गुरु है, उस बातों को हम स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर गुरु कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो हमें पसंद नहीं है, हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे। अर्थात गुरु वो कहने चाहिए जो हम चाहते हैं, वो नहीं जो वो चाहते हैं। ये गुरु स्वीकार करना नहीं है। हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया है क्या। हम उनको ये नहीं बोले कि आप ये बोलिए और मैं स्वीकार करता हूं, वो जो बोले उसको स्वीकार करना चाहिए। और चौथी चीज, भक्तों का अपमान, भक्तों के प्रति अपराध कभी नहीं करना चाहिए। वैष्णव अपराध इसको हाथी मता, हाथी अगर एक खेत में घुस जाता है तो केवल चलने मात्र से, लेटने मात्र से सारा खेत खराब कर देता है। एक बार हमने देखा था गोकुल धाम में, रात को हाथी आ गए थे, तो सुबह हम लोग उस जगह पे गए थे देखने के लिए, तो देखा कि इतना बढ़िया, दो दिन पहले बढ़िया खेत था, उसमें चावल लगे हुए थे, चावल का खेत था, और अगले दिन जाकर देखा तो सारा तहस नहस। क्या हुआ, बस हाथी आया चावल के खेत में, ठंडक होती है तो लेट गया, थोड़ा घूम गया होगा, पता नहीं क्या किया उसने, थोड़ा और थोड़ा चल दिया, सारा खेत समाप्त। और अगर पागल हाथी आ जाए, ये तो चलो पागल नहीं था, आराम कर रहा था आनंद, पागल हाथी हो तो वो सब तहस नहस कर देता। तो वैष्णव अपराध को पागल हाथी माना गया है। ये भक्ति का बड़ा सुंदर बगीचा आपने लगाया, कई वर्षों से रोज 16 माला कर करके आप देखते हैं बगीचा लगाते कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग बीज डालते हैं, रोज जाकर देखते हैं फूल निकला कि नहीं निकला, निकला कि नहीं, अरे हाँ छोटा सा पौधा आया, अरे और बढ़ रहा है। व्यक्ति जब पौधा लगाता है बड़ा अच्छा लगता है उसको देखने के लिए। वैसे बाजार में बहुत फूल मिलते हैं, लेकिन जो अपना लगाया हुआ निकलता है उसमें फूल आता है तो इतना आनंद आता है, फूल आ गया। तो ऐसे हमने कई सालों से पौधा लगा रहे हैं, भक्ति का श्रवण और कीर्तन से सिंचन कर रहे हैं, उसको बीज बो दिया है, चल रहा है, आ रहा है, धीरे धीरे बहुत सुंदर बगीचा हो गया। पागल हाथी को छोड़ दिया उसमें, वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध क्या है, हम लोग रोज कहते हैं, देखिए माया कितनी प्रभावी है। रोज सुबह हम लोग बैठते हैं, भगवान के 10 नामों के प्रति अपराध, क्या अपराध है। पहला अपराध कौन सा है, ऐसे भक्तों के, ऐसे लोगों के प्रति अपराध करना जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन कृष्ण प्रचार में समर्पित किया है। रोज बोलते हैं लेकिन वही करते हैं, तो इस खाली हमारे लिए वही सारे अपराध, उन भक्तों के प्रति उनकी निंदा करना, ये अपराध है ना। रोज कहते हैं ना, रोज सुबह हम लोग पेपर लेकर बैठ जाते हैं, उन वैष्णव भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण भक्ति के लिए या कृष्ण प्रचार में समर्पित किया है। बड़ी अच्छी तरह से बोलते हैं, 10 नाम हो गए, पेपर बंद किया, चलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 दिया, उसको समझिए पहला ही अपराध है, और हम उन्हीं की निंदा करते हैं। तो ऐसी निंदा से, यहां पर यही बताया गया है कि अगर वैष्णव अपराध किया, पागल हाथी को छोड़ दिया आपने, जरा सी चीज निंदा, अरे वो भक्त ऐसा है, वो ऐसा है, उसका भाव ऐसा है, वो दूसरा भक्त उससे अच्छा है, ये वैसा है, निंदा, कुछ नहीं होगा उस भक्त को, कुछ नहीं होगा आपकी निंदा से। जिसकी आप निंदा कर रहे हो वो वैष्णव को, शिवजी को कुछ नहीं हुआ। शिवजी के प्रति अपराध किया, नुकसान किसका हुआ, दीति का नुकसान हमारा है। हम जब निंदा करते हैं, भक्ति हमारी नाश होती है, हमारे हृदय से उत्साह चला जाता है, हमारे हृदय से कृष्ण प्रेम चला जाता है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी जब मैं पहले पहले भक्ति में आया था बहुत आनंद था, आश्रम में आया बड़ा आनंद था, लेकिन अब वही 10 साल बाद आनंद चला गया। क्यों चला गया? वैष्णव अपराध, निंदा शुरू कर दी। क्योंकि जब पहले पहले भक्त आते हैं तो हर एक भक्त को देखकर दंडवत प्रणाम करता है, सोचता है ये तो वैकुंठ से आए हुए हैं, शुद्ध भक्त हैं। थोड़े समय बाद सोचने लगता है, अरे 4 साल 5 साल पहले ही तो आए हैं मुझसे, कौन सी बड़ी बात है। मैंने भगवदगीता नहीं पढ़ी थी, अब मैंने भगवदगीता पढ़ ली। पहले मैं प्रवचन नहीं देता था, अब मैं प्रवचन देता हूं, कौन सी बड़ी बात है। इनमें मुझमें क्या अंतर है? अपराध। हमारी भक्ति में अगर उत्साह जाता है, हमारी भक्ति में रुचि चली जाती है, हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते, वैष्णव अपराध। अपराध मीन्स आराधना से दूर, श्रीमती राधा रानी की कृपा से दूर, अपराध। तो फिर कैसे भक्ति में प्रगति होगी? तो ऐसी निंदा से बचना चाहिए। लेकिन हमारी हृदय में इतनी सारी वो भोग करने की मान प्रतिष्ठा की भावना है कि हम रोज उस निंदा को करते हैं, इसलिए उस निंदा को हम निंदा नहीं मानते हैं। सावधान रहना चाहिए, समय बहुत कम है हमारे पास। कितना समय है जीवन में? कौन यहां बैठा गारंटी दे सकता है कि अगले 10 साल तक मैं जीवित रहूंगा, 5 साल तक जीवित रहूंगा, 2 साल तक जीवित रहूंगा, अगले 1 दिन जीवित रहूंगा? कौन गारंटी दे सकता है? तो फिर निंदा करने के क्या लाभ है? फिर वैष्णव अपराध करने का क्या लाभ है? अगर उस वैष्णव में कोई कमी दिखती भी है तो वो कृष्ण और उनकी बात है, वो कृष्ण संभालेंगे, वो उनके गुरु संभालेंगे, वो उनकी अथॉरिटी संभालेंगी। हम निंदा करके अपनी भक्ति का नाश क्यों करें? इस चीज को समझना चाहिए। तो यहां ये 4 चीजें उन्होंने बताई, तुमने कर दिया और इसीलिए तुम्हारे पुत्र ऐसे होंगे। तो जब बाद में बहुत उसने क्षमा याचना की कि नहीं आप कुछ कीजिए, आप कर सकते हैं, आपके अंदर शक्ति है, तो मैं मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, मैंने ये क्या कर दिया। कोई बात नहीं, भगवान मारेंगे मेरे पुत्रों को, अच्छा है, वो तो कोई चिंता नहीं है मुझे, लेकिन ऐसे असुर उत्पन्न होंगे, कैसे होगा समाज में पूरा। तो उस समय कश्यप मुनि ने फिर 4 बातें कही कि तुमने ये 4 चीजें की अभी अभी, इसीलिए तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। तो क्या 4 बातें बताई? सबसे पहली, तुमने पश्चाताप किया। दूसरी, भगवान का तुमने आदर किया। उसने कहा भगवान मानेंगे, बहुत अच्छी बात है, भगवान मेरे पुत्रों को मारेंगे। तुमने भगवान का आदर किया, तुमने शिव जी का आदर किया, क्योंकि वो प्रार्थना करने लगी कि शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसे ही मेरे ऊपर ना करें, मैं बहुत पतित हूं इत्यादि। तुमने शिव जी का आदर किया और तुमने मेरा आदर किया, क्योंकि उसने कहा आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं, आप मुझे ये दे सकते हैं। तो उन्होंने फिर से 4 बातें की। पहले 4 बातें बताई थी जिसके कारण तुम्हारा नाश होगा या तुम्हारे पुत्रों को असुर बनेंगे, और फिर 4 बातें बताई जिससे तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। तो 4 बातें थी, पश्चाताप, भगवान का आदर, भक्तों का आदर, गुरु का आदर। तो 4 चीजें पतन का कारण बताई, अनियंत्रित मन, गलत समय और गुरु की बातों को नहीं मानना और भक्तों के प्रति अपराध। और फिर अगर कोई व्यक्ति ये कर चुका है तो 4 चीजें अगर करे तो इससे परे आ सकता है। सबसे पहला, पश्चाताप करे। हमारे हृदय में पश्चाताप होना चाहिए, मैंने क्या कह दिया, मैंने क्या कर दिया, ये भक्त इतना भगवान की सेवा में लगा है और मैं इनकी निंदा कर रहा हूं, ऐसा हृदय में पश्चाताप आना चाहिए। या ये भक्त इतना भगवान की सेवा कर रहा है और मैं कोई मदद नहीं कर रहा हूं इसकी, तो गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी, जो भी, उसको सोचना चाहिए मैं क्या मदद कर सकता हूं। ऐसा व्यक्ति जो भगवान की सेवा में लगा है उसकी मैं क्या मदद कर सकता हूं। तो हमें पश्चाताप होना चाहिए कि मैंने क्या कर दिया। कोई भी अपराध हो गया, चाहे निंदा कर दी हो या अन्य कोई अपराध हमारे से हो गया हो वैष्णवों के प्रति, हृदय में पश्चाताप होना चाहिए। और पश्चाताप कैसे होता है? पश्चाताप केवल बाहरी दिखावा नहीं है कि आंतरिक नहीं है कि बस मुझे पश्चाताप हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, नहीं, पश्चाताप है तो हमें उस भक्त के पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, चरण पकड़ने चाहिए। जैसे जैसे अब ये दिति कर रही है, गिड़गिड़ा रही है, क्षमा मांग रही है, आप बस आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती मैंने की, ये है, तो पश्चाताप होना चाहिए। और दूसरा, भगवान के प्रति आदर रहना चाहिए, कभी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, और ना ही भक्तों के प्रति और गुरु के प्रति हमें अनादर का भाव रखना चाहिए। हर अवस्था में गुरु और भक्त इनके प्रति आदर बना रहना चाहिए। जान लेना चाहिए, अगर हमें कष्ट भी हो रहा है तो ये हमारे कर्मों का फल है, मैंने कोई अपराध किया होगा, इनकी गलती नहीं है, ये मेरे अपराध हैं जो मुझ तक इनके द्वारा आ रहे हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये भक्त हैं। तो गुरु के प्रति और भक्तों के प्रति सदैव आदर रखना चाहिए, और ये आदर बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए, ये जान लीजिए। ये आदर बाहरी दिखावा नहीं कि बाहर बाहर से हम जहां देखे दंडवत करते रहें, और हृदय में हमारे ये हो कि ये व्यक्ति ये मेरे लिए कष्ट का कारण है। नहीं, भक्तों को देखकर हमारे मन में ऐसा आदर होना चाहिए कि केवल इस व्यक्ति के कारण मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि ये मुझे ये ज्ञान दे रहे हैं। ये पश्चाताप है, ये सही भाव है भक्ति करने का, तो इसको हमें लाना चाहिए। ये हम बहुत व्यवहारिक चीजें बता रहे हैं आपको कि हमारे साथ ऐसा होता है, हम बाहरी दृष्टि से किसी भक्त का बहुत आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, सब कुछ उसके लिए करते हैं, लेकिन हृदय में रहता है कि ये आपस में भी रहते हुए, आपस में दो भक्त रहते हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे केवल वरिष्ठ भक्तों को आदर देना है और जो साथ में रह रहे हैं वो तो उसको थप्पड़ भी मारा तो चलेगा। नहीं, हर एक भक्त को, अपने से वरिष्ठों को, अपने से समान और अपने से कनिष्ठ, उन भक्तों को भी आदर देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि वो भक्त कितना आगे है भक्ति में। हम सोचते हैं कि हमने 15 साल 20 साल 30 साल बिता लिए, लेकिन हो सकता है वो भक्त पिछले जन्म जो अभी अभी आया है आपसे छोटा है उम्र में, अभी ज्वाइन भी उसने आपसे लेट किया है, 5 साल ही हुए उसको आकर, लेकिन हो सकता है अपने पिछले जन्म में वो बहुत ज्यादा भक्ति करके आया हो, थोड़ी सी बाकी है, आपसे बहुत आगे है वो भक्ति में। तो भक्ति में आगे रहना इस जन्म पर आधारित नहीं है कि इस जन्म में कब वो भक्ति में आया, कब उसने कृष्ण भावना व्रत को स्वीकार किया। हाँ, एक नियम के अनुसार हम लोग थोड़ा इसका पालन करते हैं, लेकिन हो सकता है पिछले जन्म में वो 90% भक्ति कर आया हो, केवल 10% बाकी है उसकी, और आपने अपनी भक्ति अब शुरू की है, आपने 10% की है केवल, आपके लिए अभी 90% जाना बाकी है, लेकिन ये 90 कर आया हुआ है, भले आपसे छोटा है, भले आपके बाद में आया है। तो इसीलिए भक्तों को, हरेक को आदर देना चाहिए। तो ये चार चीजें उन्होंने समझाई कि तुम्हें पश्चाताप होना चाहिए जो अपराध हो गए, भगवान का आदर करना चाहिए, भक्तों का आदर और गुरु का आदर, और क्योंकि तुमने ये किया, कश्यप मुनि उसको कहते हैं, क्योंकि तुमने ये किया इसीलिए तुम्हारे ऊपर कृपा ये हुई है कि तुम्हारा जो पुत्र का पुत्र होगा वो महान भक्त होगा। तो फिर 44वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक प्रहलाद महाराज का वो गुणगान करते हैं, क्योंकि ये प्रहलाद प्रकट होने वाले हैं हिरण्यकश्यप से, तो प्रहलाद का वो गुणगान करते हैं कि कैसे प्रहलाद के गुण होंगे, बहुत सुंदर उनके गुणों का वर्णन है, तो हम थोड़ा उसको पढ़ना चाहेंगे। वो कहते हैं कि जो तुम्हारा पुत्र होगा वो भक्त होगा और उसकी ख्याति भगवान के समान होगी, उसके पदचिन्हों का अनुसरण करने के लिए संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे। मतलब उसका चरित्र इतना श्रेष्ठ होगा कि जो साधु पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, वो भी उसके चरित्र का पालन करना चाहेंगे मुक्त होने के लिए। मतलब ये देखिए कि वो सारे संतों से, साधुओं से श्रेष्ठ होगा। फिर वो कहते हैं हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड के नियंता भगवान ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं। तो हर व्यक्ति को प्रसन्न कर सकेंगे अपने पिता हिरण्यकश्यप को छोड़कर, वो लिखा नहीं है क्योंकि ऐसा भक्त किसी और चीज की इच्छा नहीं करता, केवल भगवान की इच्छा करता है। और फिर वो भक्तों का गुणगान, उनका गुणगान करते हुए कहते हैं कि भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्ति योग के कारण निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। वह समस्त सद्गुणों का सुयोग्य आगार होगा, प्रसन्न रहेगा, अन्यों के सुख में भी सुखी, अन्यों के दुख में दुखी, और उसका एक भी शत्रु नहीं होगा। वह सारे ब्रह्मांडों के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा। देखिए यहाँ भक्तों के गुण दे रहे हैं, समय नहीं है, नहीं तो इन पर बहुत चर्चा हो सकती है, तो कम से कम सुन लीजिए कि क्या गुण हमारे होने चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो अन्यों के सुख में सुखी और अन्यों के दुख में दुखी होगा, एक भी शत्रु नहीं होगा उसका। फिर हिरण्यकशिपु कौन था, मार रहा था, उसका शत्रु था, उनका शत्रु नहीं था वो। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को शत्रु मानता था, प्रहलाद ने कभी हिरण्यकशिपु को अपना शत्रु नहीं माना, अजात शत्रु। महाराज युधिष्ठिर का भी एक नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है एक भक्त के लिए, हर एक भक्त को अजात शत्रु होना चाहिए। हमें किसी को अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए। हाँ, कोई अगर हमें हिरण्यकशिपु कष्ट दे रहा है, मार रहा, ठीक है, भगवान की योजना है, वो शत्रु नहीं है मेरा। तो अजात शत्रु ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से और भी गुण उनके दिए कि तुम्हारा पौत्र भीतर तथा बाहर से भगवान का दर्शन कर सकेगा और भगवान के सदैव वो दर्शन करता रहेगा। तो इस तरह उन्होंने प्रहलाद का वर्णन किया। तो ऐसे अध्याय के अंत तक उन्होंने वर्णन किया और फिर अगले अध्याय में भगवान के धाम का वर्णन आएगा कि वहाँ पर क्या क्या हुआ भगवान के धाम में, कैसे अब वर्णन आएगा कि दीति के गर्भ में जो पुत्र आए वो कौन थे। तो उनका सब वर्णन अब अगले अध्याय में किया जाएगा।